पृष्ठ संख्या 55। युद्ध के दौर का घटनाक्रम। यूरोपीय मोर्चों पर प्रथम विश्व युद्ध की उपयुक्त संज्ञा से अभिहित इस युद्ध में विश्व के विभिन्न कई भागों में लड़ाइयां लड़ी गई। युद्ध की तीव्रता तथा नरसंहार की विराटता की दृष्टि से यूरोप में लड़ी गई लड़ाइयां दुनिया के दूसरे हिस्सों में लड़ी गई लड़ाइयों से बहुत अधिक भीषण थी। यूरोप के पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध की शुरुआत उस समय हुई जब जर्मन सेना ने बेल्जियम को तेजी से लांघते हुए दक्षिण फ्रांस में प्रवेश किया। सितंबर के आरंभ में जर्मन सेना पेरिस के बहुत पास आ चुकी थी। इस बीच फ्रांसीसी सेना अलसेंस लॉरेन में प्रवेश करने के इरादे से फ्रांस जर्मनी सीमा पर पहुंच गई थी। जर्मन सेना को उम्मीद थी कि वह फ्रांसीसी सेना को घेर लेगी और आनन फानन में जीत हासिल कर लेगी। अलसेंस लॉरेन पर फ्रांसीसी आक्रमण को तो विफल कर दिया गया, लेकिन वापस लौटती फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के साथ होकर मारने की लड़ाई। यह लड़ाई मारने नदी के निकट लड़ी गई थी, जिससे इसका नाम मारने की लड़ाई पड़ा। मैं जर्मन सेना से भिड़ गई। दोनों पक्ष प्राणपण से लड़े, लेकिन नवंबर के अंत तक पश्चिमी मोर्चों पर गतिरोध पैदा हो गया। दोनों पक्ष 4 वर्षों तक वहां डटे रहे, लेकिन किसी को अपने मोर्चे से पीछे नहीं हटा पाए। स्विट्जरलैंड से लड़ी फ्रांस की दक्षिणी सीमा से लेकर उसके उत्तरी तट तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर से खोदे गए खंडकों और कटीले तार के बाणों के पीछे दोनों सेनाएं मोर्चे लगाकर बैठ गई। खंडकों के पीछे मशीन गनों और राइफलों की गोलीबारियों से सुरक्षा पा रही दोनों सेनाओं में से किसी से भी एक दूसरे की खंडकों की पंक्ति को भेदते नहीं बन रहा था। सूर्योदय से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले करते थे, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिल पा रही थी। अलबत्ता दोनों और हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 1915 में सफलता की आशा से जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग आरंभ किया और 1916 में ब्रिटेन ने हाल ही में आविष्कृत हुए टैंक कहे जाने वाले युद्ध वाहनों का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन दोनों में से किसी को भी किसी युक्ति का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों पक्षों के जितने सैनिक मर जाते थे, उतने फिर नई भर्तियों से जुटा लिए जाते थे। पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के खिलाफ कुछ आरंभिक सफलता प्राप्त की, लेकिन वह अल्पकालिक साबित हुई। 1915 में रूसी सेना को जबरदस्त शिकस्त खानी पड़ी और केंद्रीय शक्तियों की सेना रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों में प्रवेश कर गई। 1916 में रूस ने दूसरा हमला शुरू कर दिया, जिसे विफल कर दिया गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। 2 मार्च 1918 को उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए और इस संधि की कीमत के तौर पर उसे अपने अनेक प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। रूस द्वारा लामबंद किए गए 1.2 करोड़ सैनिकों में से 17 लाख मारे जा चुके थे, 50 लाख घायल हो गए थे और लगभग 25 लाख या तो गुम हो गए थे या बंदी बना लिए गए थे। इस बीच सर्बिया और रोमानिया आत्मसमर्पण कर चुके थे। यूरोप के बाहर युद्ध का फैलाव। यूरोप से बाहर कुछ बड़ी लड़ाइयां उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में लड़ी गई। जर्मनी और तुर्की ने साथ होकर मित्र शक्तियों के उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया औपनिवेशिक प्रदेशों तथा प्रभाव क्षेत्रों को खतरे में डाल दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने इन प्रयत्नों का मुकाबला करते हुए उस्मानिया साम्राज्य के अरब प्रदेशों पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने अरब राष्ट्रवादियों तथा अन्य तत्वों से संपर्क करके तुर्की के विरोध में अरबों को उकसाया और विद्रोह करने को प्रेरित किया। तुर्की शासन से अरब देशों की आजादी का समर्थन करने का दिखावा करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 में साइकस पाइकॉट नामक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें अरब देशों को इन दोनों शक्तियों के बीच बांटने की व्यवस्था थी। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रवाद की स्थापना की, स्वयं को प्रतिषिद्ध किया। एक अन्य देश के बारे में उसके नागरिकों से कोई बातचीत किए बिना इस तरह ब्रिटेन का प्रतिबद्ध हो जाना पश्चिम एशिया की शांति तथा अस्थायित्व के लिए एक भारी संकट साबित होने वाला था। लड़ाई के दौरान एशिया तथा अफ्रीका में जर्मन औपनिवेशिक क्षेत्रों को मित्र शक्तियों ने छीन लिया। चीन में जर्मन प्रभाव क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करके जापान ने अपने औपनिवेशिक हितों को आगे बढ़ाया। उसने चीन की ओर रियायतें देने के लिए भी मजबूर किया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जर्मन प्रदेशों पर दक्षिण अफ्रीकी सेना ने कब्जा कर लिया। टोगोलैंड पर ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी फौजों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया और कैमरून पर ब्रिटिश फ्रांसीसी तथा बेल्जियमी सेनाओं ने। जर्मन पूर्व अफ्रीका में ब्रिटिश तथा जर्मन फौजों की लड़ाई युद्ध के अंत तक जारी रही। यूरोप में युद्ध में गतिरोध। इस बीच यूरोप में लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई को वार ऑफ एट्रिशन या थका देने वाले युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह था कि अधिकार से अधिक सैनिकों को लामबंद करके तथा विशाल मात्रा में तोपखाने और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करके दोनों पक्ष एक दूसरे को थकाकर मैदान से हटा देने की कोशिश कर रहे थे। इस थका देने वाले युद्ध के दौर में दो महाविनाशकारी लड़ाइयां लड़ी गई। फरवरी 1916 में जर्मनी ने वर्दून के फ्रांसीसी गढ़ पर भारी हमला कर दिया। जवाब में फ्रांसीसियों ने लाखों सैनिकों को इस लड़ाई में झोंक दिया। यह लड़ाई युद्ध संबंधी गतिरोध दूर करने में तनिक भी सहायक नहीं हुई, जबकि इसमें लगभग 7 लाख सैनिक हताहत हुए। दोनों और लगभग बराबर संख्या में दूसरी भी सोम की लड़ाई, जिसके सोम नदी के तट पर लड़े जाने से इस लड़ाई का नाम पड़ा। यहाँ मित्र शक्तियों की सेनाओं में मुख्य रूप में ब्रिटेन की ही सेना लड़ रही थी और उसी ने यह आक्रमण आरंभ किया। इस लड़ाई के पहले ही दिन लगभग 60,000 ब्रिटिश सैनिक हताहत हुए। नाकेबंदी की नीति। यह युद्ध एक संपूर्ण युद्ध का रूप ले चुका था। यह युद्ध नेताओं एवं सेनाओं के बीच होने वाली लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं रह गया था। इसके लिए प्रमुख युद्धरत राष्ट्रों के संपूर्ण संसाधनों की लामबंदी की जरूरत थी। अधिकाधिक परिमाण में गोला बारूद तथा अन्य युद्ध सामग्री का उत्पादन अवश्य हो गया था। इसके लिए युद्धरत राष्ट्रों की उत्पादन प्रकृति को नया रूप देना पड़ा। हर आर्थिक कार्यकलाप को युद्ध प्रयत्न के लिए सहायक बनाना था। इसके लिए यह भी जरूरी कि खाद्य सामग्री, कच्चा माल या युद्ध सामग्री अथवा किसी भी प्रकार का माल कहीं से भी शत्रु देश में न पहुंचने दिया जाए। युद्ध में से हर पक्ष सोचता था कि ऐसा करके, यानी इस तरह की आर्थिक नाकेबंदी द्वारा, वह दूसरे पक्ष को भूख और अभाव की स्थिति में डालकर उससे समर्पण करा लेगा। ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। यद्यपि इन दोनों देशों के नौसैनिक बेड़े सिर्फ एक लड़ाई लड़े सो भी अनिर्णित, फिर भी ब्रिटेन जर्मनी की नाकेबंदी करने में सफल हो गया। खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन पहुंचने से रोकने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन की ओर जाने वाले जहाजों को डुबाने के लिए पनडुब्बियों, यूबोट जिसे जर्मन में उंटरसीवूट कहते थे, का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिनका विकास उसने तब हाल में किया था। यहाँ तक कि ब्रिटेन की ओर जाने वाले तटस्थ देशों के जहाजों को भी वह नहीं बकसता था, जिन कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों की ओर से युद्ध में उतरा। उनमें से एक यह भी था। लड़ाई में विमानों का प्रयोग भी आरंभ हो गया और यद्यपि शहरों पर हवाई हमले से बमबारी की गई और जर्मन तथा मित्र शक्तियों के विमानों के बीच आकाश में आमने सामने की लड़ाइयाँ हुई, तथापि इस युद्ध के परिणाम का निर्णय करने में हवाई लड़ाइयों की कोई खास भूमिका नहीं रही। युद्ध का अंत। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से हट गया था और उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि करने पर विवश कर दिया गया था। लेकिन मित्र शक्तियों तथा केंद्रीय शक्तियों के बीच युद्ध का निर्णय पूर्वी मोर्चे की बजाय अन्यत्र होना था। मित्र शक्तियों को रूस के हटने से जो नुकसान हुआ था उसकी पूरी भरपाई संयुक्त राज्य के युद्ध में उतरने से हो गई थी। युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद से ही संयुक्त राज्य मित्र शक्तियों को गोला बारूद खाद्य सामग्री आदि से तरह तरह का साथ दे रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की खूब तरक्की हुई थी। अब संयुक्त राज्य की सेना तथा विशाल आर्थिक संसाधनों का सीधा उपयोग केंद्रीय शक्तियों को हराने के लिए किया जाने वाला था। इस बीच सभी युद्धरत देशों की नागरिक आबादी तथा सैनिकों में असंतोष की आग सुलग रही थी। प्रदर्शनों और सैनिक विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया था। रूसी सम्राट पहले ही सिंहासन च्युत हो चुका था। केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाने वाले देशों में असंतोष काफी अधिक व्यापक था। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में एक के बाद एक अनेक हड़तालें हुई। इसके अलावा उनकी थल सेनाओं और नौसेनाओं में भी कई विद्रोह हुए। ऑस्ट्रिया हंगरी में अधीनस्थ राष्ट्रों के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना छोड़कर भागना शुरू किया। उनमें से बहुत से सैनिक तो मित्र शक्तियों की ओर से लड़ने लगे। जुलाई 1918 के मध्य से युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ जाने लगा था। जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर कई आक्रमण करके मित्र शक्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जुलाई महीना आते आते इसके आक्रमणों को रोक दिया गया और मित्र शक्तियों ने प्रत्याक्रमणों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बीच मित्र शक्तियों की सेनाएं रूस में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। पूर्व में हजारों जापानी सैनिक साइबेरिया में घुस गए। हस्तक्षेप का यह दौर तो युद्ध की समाप्ति के बाद तक चलता रहा, लेकिन इस बीच केंद्रीय शक्तियों की हार का सिलसिला आरंभ हो गया था। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। अक्टूबर के अंत तक उस्मानिया साम्राज्य के अस्तित्व का भी अंत हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी सम्राट की अधिकांश जातियां जैसे चेक, पोल, युगोस्लाव तथा हंगेरियाई अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुके थे। जो सम्राट की सीमा से बाहर था वे उसे नियंत्रण में नहीं ला सकते थे। अब केवल जर्मनी ही बचा रह रहा था। उस पर मित्र शक्तियों के निर्णायक आक्रमण सितंबर में आरंभ हो गए। 3 नवंबर को जर्मनी में क्रांति भड़क उठी। 9 नवंबर को जर्मन सम्राट ने सिंहासन त्याग दिया और भागकर हॉलैंड चले गए। 10 नवंबर को जर्मनी को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 11 नवंबर को दिन के 11 बजे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, जो 6.5 करोड़ सैनिक लामबंद किए गए थे। उनमें से कोई 90 लाख मारे गए थे और 6.2 करोड़ घायल हुए थे। इस महाविनाश के सही स्वरूप को समझने और यूरोपीय समाजों पर इसके भीषण दुष्परिणामों का अंदाजा लगाने के लिए यह याद रखना चाहिए कि मरने और शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टियों से जख्मी होकर जीने वालों में से अधिकांश यूरोपीय समाजों के ताज़ा खिले फूल थे। 19 से 35 साल की उम्र के युवा लोग एरिक मारिया रिमार्क ने, जिन्हें जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए विवश कर दिया गया था, एक उपन्यास प्रकाशित किया जिसके अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, पश्चिमी मोर्चे पर नीरव शांति। इस उपन्यास के समर्पण पृष्ठ पर यह वक्तव्य है, यह पुस्तक ना तो किसी पर किसी प्रकार का दोषारोपण है और न अपराध स्वीकारन। यह साहसिक गथा से बिल्कुल नहीं लिखी गई है, क्योंकि जो लोग मृत्यु का सामना बिल्कुल आमने सामने से करते हैं उनके लिए मृत्यु को कोई साहसिक कृतित्व नहीं होती। इसमें सिर्फ उन मानवों की एक पीढ़ी के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी जो गोलों की मार से भले ही बच गए हों लेकिन युद्ध से तबाह हो गए।